विदेश के एक लेखक एच जी वेल्स ने एक छोटी सी कहानी लिखी है जिसमें दिखाया है एक व्यक्ति बहुत किताबें पढ़ता है और उसके हाथों में बहुत सारी पुरातन किताबें आ जाती है जिसमें लोगों के यात्रा का वर्णन था और कैसे कैसे तूफानों में समुद्री यात्रा दूसरे यात्रियों ने की, ये वो पढ़ता है। और वो पढ़ते पढ़ते इतनी उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है कि वो सोचता है मुझे भी ऐसी एक यात्रा करनी है, ऐसी एक खतरनाक यात्रा, ऐसी एक लंबी यात्रा, ऐसी एक जहाजी यात्रा, एक समुद्री यात्रा। तो एक बड़ा सा जहाज लेने का सोचता है, पर कुछ किताबों में पढ़ता है पुरातन काल में तो जहाज होते ही नहीं थे, छोटी छोटी डोंगियां होती थी, नाव से भी छोटी। वो सोचता है ऐसी एक डोंगी ले लूं और बहुत सारा खाना ले लेता है, बहुत सारा सामान ले लेता है, गोलियां ले लेता है, टैबलेट्स ले लेता है विटामिन की और अपनी यात्रा आरंभ करता है। कई दिन गुजर जाते हैं, कई माह, कई सप्ताह गुजर जाते हैं, एक महीना हो जाता है, दो महीना हो जाता है। दूर समुद्र में वो जा रहा है, उसे दूर दूर तक कहीं जमीन नहीं दिखाई देती। जाते रहता है, जाते रहता है, अकेला उस छोटी सी नाव का हो या डोंगी जिसको कहते हैं उसमें बैठकर। 3 मास गुजर जाते हैं तब भी कुछ नजर नहीं आता और फिर यकायक जमीन दिखाई देती है। उत्साह बढ़ जाता है। किताबों में उसने पढ़ा था कि जब इस तरह से यात्रा की जाए तो किसी एक टापू पर तुम जाकर पहुंचते हो, वहां पर नए लोग होते हैं, नई भाषा होती है, वहां कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो जमीन पर उतरता है और इतना आश्चर्य से भर जाता है कि पता नहीं मैं कहां आ गया इतने मास के बाद। परंतु उदासी छा जाती है जब ये पाता है कि यहाँ के लोग तो वही भाषा बोल रहे हैं जो मेरे गांव के लोग बोलते थे, यहाँ पर भी लोग अंग्रेजी ही बोल रहे हैं, यही तो भाषा हमारे उधर भी बोली जाती थी। और अंदर घुसता है, अंदर जाता है तो सब परिचित सा नजर आता है, और अंदर जाता है तो गांव दिखाई देता है और गांव में वही सारे घर जो कि पहले थे। और जब उसे अपना ही घर दिखाई देता है तब उसे पता चलता है वो तो वहीं आ गया जहां से वो निकला था। यहां लोग भी वही, भाषा भी वही, संस्कृति भी वही। इतने मास की यात्रा व्यर्थ गई, वहीं पहुंच गया जहां से वो निकला था। एक शॉर्ट स्टोरी है जो दर्शाती है मनुष्य की यात्रा को, और लेखक लिखता है शायद मनुष्य भी इसी तरह की यात्रा करता है, जीवन भर यात्रा करते रहता है और अंततः जब किसी मुकाम पर पहुंचता है तो पाता है ये तो वही है जहां से यात्रा चालू की थी, हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। हम सभी ब्राह्मण आत्माओं की भी एक यात्रा है, हम सभी आत्माओं की भी एक यात्रा है, एक जीवन यात्रा, और हमारा भी कोई एक लक्ष्य है। पर हमारी यात्रा बड़ी भिन्न है, बड़ी सूक्ष्म है, और हमारी जो मंजिल है वो तो बहुत सुंदर है, वो स्वर्गिक संसार। इस यात्रा में हम कहाँ तक आए, कहाँ तक पहुँचे, कहाँ जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी भटकते 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 वहीं पहुँच जाए जहाँ से चालू हमने किया था। जैसे उदाहरण के लिए दिखाते हैं, कुछ मित्र ढेर सारी शराब पी लेते हैं और समुद्री यात्रा में जाते हैं, सभी के सभी नाव में बैठते हैं, रात भर नाव खेते रहते हैं, रात भर वो चप्पू चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, सोचते हैं पता नहीं हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और जब सुबह होके होती है तो देखते हैं हम तो तट पर ही है, क्योंकि लंगर तो खोला ही नहीं, रात भर परिश्रम चालू था और नाव कहीं पहुंची ही नहीं। यात्राओं के विषय में बड़ी रोचक कहानियां हैं संसार में। एक सिंधबाद की भी यात्रा दिखाई है, 7 बार यात्रा करता है, हर बार बहुत सारी घटना होती है, एक एक यात्रा जानलेवा होती है, और जब जब लौटता है ये सोचता है कि इसके बाद अब यात्रा नहीं करूंगा, परंतु उसका स्वभाव ही उसे यात्रा करने पर मजबूर करता है, फिर से नई यात्रा करता है। कुछ महीनों बाद फिर से वो सिंधबाद की यात्रा दिखाई है, जहाजी समुद्री यात्रा। तो जैसे कहा, ये ब्राह्मण जीवन भी एक यात्रा है, एक सुहावना सफर है, एक जर्नी, एक ट्रेवल है, और हमारी भी एक मंजिल है, हमें भी कहीं पहुंचना है। ध्यान इतना रखना है कि कहीं भटक ना जाए, ध्यान इतना रखना है कि लंगर निकाल दिया हो फिर नैया चला रहे हो, नहीं तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। और कोई कंपास नहीं, कोई डायरेक्शंस नहीं, कोई दिशा नहीं, तो वहीं पहुंचेंगे जहां से चालू किया था। तो आज हम अभी चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन की जो यात्रा है, मंजिल श्रेष्ठ है या यात्रा? मंजिल या यात्रा? जो यात्रा कहते हैं उन्हें भी तर्क से परास्त किया जा सकता है, और जो कहते हैं मंजिल लक्ष्य है उन्हें भी परास्त किया जा सकता है। जो कहते हैं हमें स्वर्ग से अधिक प्रेम है, और कोई कहते हैं हमें इस संसार से अधिक प्रेम है, तो दोनों में गड़बड़ है। बच्चे बाप से पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा, बाप कहते हैं क्या बाप से तंग आ गए, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं चला जाऊं, इसलिए तो पूछते हो विनाश कब होगा। क्या कोई आए हुए मेहमान से ऐसा पूछता है कि आप कब जाओगे, और कोई यदि कहे कि हमें तो यहीं रहना है, यही अच्छा है, इस छीछी विकारी दुनिया में अब तक मोह गया नहीं, यही रहना है, तो चर्चा का सुंदर विषय है कि मंजिल से भी सुहावना ये सफर है संगम का। कैसे? अव्यक्त वाणी 7 फरवरी 1980। ये एकमात्र अव्यक्त वाणी है जिसमें उस दुनिया का और इस दुनिया का वर्णन है एक साथ, और कैसे ये दुनिया उस दुनिया से अधिक श्रेष्ठ है, कैसे ये संगमयुगी जीवन उस सतयुगी जीवन से श्रेष्ठ है, कैसे ये संगमयुगी सफर उस सतयुगी सफर से श्रेष्ठ है, इसका बाबा ने वर्णन किया है। पहली मुरली चली थी 4 तारीख को, 4 फरवरी 1980। ये पहली मुरली है जिसमें सतयुग का संपूर्ण वर्णन है, और उसी के 3 दिन के बाद 7 तारीख को मुरली चली थी सतयुगी बादशाही बनाम संगम युगी बादशाही। तो उसी 2 मुरलियों के आधार से आज की हम ये चर्चा करेंगे। बाबा ने कहा है हमेशा अपने घर को और राजधानी को याद करो, एक आंख में घर एक आंख में राजधानी। इस दुनिया से अपनी बुद्धि को हटा दो, उस अपनी बुद्धि को उस दुनिया में लगाओ जो आने वाली है। नया घर बन के तैयार है, अब पुराने घर से क्या मोह। तो क्या अंतर है उस दुनिया में और इस दुनिया में, इस संगम युगी जीवन में और इस सतयुगी जीवन में? पहले आप बताएंगे फिर हम बताएंगे कौन सा श्रेष्ठ है। संगम युगी क्यों? ये तमोप्रधान विकारी दुनिया, ये तमोप्रधान दुनिया, ऐसे बहुत सारे अंतर है। सबसे पहला अंतर, सतयुग में तुम्हें कौन जगाएगा? चिड़ियों की चहचहट और कौन जगाएगा? मनुष्य जगाएंगे, देवता जगाएंगे, प्रकृति जगाएगी। अभी तुमको सुबह सुबह कौन जगाता है? स्वयं प्रकृति पति तुमको जगाता है। वहां प्रकृति जगाएगी, अभी प्रकृति पति जगाता है। तो वो श्रेष्ठ है या ये श्रेष्ठ? ये श्रेष्ठ। सुबह सुबह आंख खोलते ही भगवान सम्मुख। आज की मुरली में वरदान है योग अर्थात श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होना, श्रेष्ठ स्मृति में स्थित होना। और श्रेष्ठ स्मृति कौन सी है? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, श्रेष्ठते श्रेष्ठ बाप की संतान हूं। जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी, और जैसी स्थिति होगी वैसा वायुमंडल होगा। और जो बच्चे श्रेष्ठ स्मृति में रहते हैं वो अपने आप सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो संगम युग में स्वयं भगवान सुबह सुबह जगाता है, पर किसको जगाएगा? सबको? कौन से बच्चों को? जिनकी रात की सोने की विधि सही है उनको, जिन्होंने सारे दिन भर श्रीमत का उल्लंघन नहीं किया है उनको, जो टीवी देखते देखते, कौन सा होता है टीवी देखते देखते जरा हाथ खड़े करना, इंद्र सभा है, और आजू बाजू नहीं देखना, केवल सामने देखना, नहीं तो बाजू वाला नहीं उठाएगा आपके डर से। क्या देखते देखते हम सो रहे हैं? टीवी देखते देखते, चर्चा करते करते, यहां वहां की बातें करते करते, पॉलिटिक्स डिस्कस करते करते, न्यूज डिस्कस करते करते, व्हाट्सएप मोबाइल इंटरनेट का प्रयोग करते करते, बात करते करते, मैसेज करते करते क्या करते करते सो रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्लास सुनते सुनते रात को सोते समय जो अंतिम संकल्प है वही उठते समय प्रथम संकल्प होगा। यहां विकार तो वहां विकार, यहां व्यर्थ वहां व्यर्थ, यहां संसार की अश्लीलता तो वो संकल्प भी वैसा ही होगा। यहां बाप की याद, यहां बाबा को धन्यवाद, यहां अनन्य भाव, यहां प्रभु प्रेम तो उठते ही प्रभु प्रेम, यहां श्रेष्ठ संकल्प तो उठते ही श्रेष्ठ संकल्प, यहां जल्दी सोना तो उधर जल्दी उठना, यहां लेट सोना तो उधर लेट उठना, यहां पर बुद्धि का भटकाव तो सुबह उठते ही बुद्धि का भटकाव, सोते समय पश्चाताप तो उठते समय पश्चाताप। इसलिए यदि हम ये चाहते हैं कि सुबह सुबह भगवान आकर हमको जगा दे तो उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और यदि दिनचर्या में श्रीमद् का बार बार उल्लंघन हो रहा है तो माया अमृत वेला बदला लेगी, सुला देगी, और फिर उठो 5 बजे, भक्तों का समय चालू होता है तब, और फिर अपने आप को समझाओ कि चलो अभी से अमृत वेला करते हैं, फिर अपने आप को समझाओ चलो रात में लेट तो हुआ था ना, यदि हम ये चाहते हैं कि भगवान उठाए, यदि हम ये चाहते हैं कि अमृत वेला श्रेष्ठ हो जाए तो बड़ी सूक्ष्म नजर रखनी पड़ेगी स्वयं पर। क्या हम देखते हैं, क्या हम खाते हैं, क्या हम सुनते हैं दिन भर, यदि व्यर्थ कर रहे हैं सब कुछ तो कहां से श्रेष्ठ का अनुभव होगा। एक भक्त रोज सुबह उठ जाता था 5 बजे, एक दिन जाग ही नहीं आया, 6 बजे उठा, इतना रोया इतना रोया, दिन भर पश्चाताप किया, दिन भर हे प्रभु तूने मुझे क्यों नहीं उठाया, ऐसे कैसे हो गया, दिन भर रोता रहा। यदि कोई ब्राह्मण लेट उठ जाए तो अपने आप को तुरंत समझा देता है, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है कभी कभी, पश्चाताप की क्या बात है इसमें। कोई कोई है जो बहुत फील भी करते हैं, संकल्प करते हैं अभी नाश्ता नहीं करेंगे, आज लेट उठे ना नाश्ता नहीं करेंगे, परंतु दोपहर के भोजन के ऊपर टूट पड़ते हैं। फिर कुछ उल्टे ही परिणाम हो जाते हैं। इतना रोया भगत, फिर दूसरे दिन सुबह 5 बजे किसी की आवाज आई, हे भगत जागो उठो, वो एकदम उठ जाता है, खुश हो जाता है कि भगवान तुम खुद आ गए मुझे उठाने, तेरा धन्यवाद। उधर से आवाज आती है, मैं भगवान नहीं हूं, मैं माया हूं। वो कहता है माया तुम कैसे आ गई। वो कहती है मैंने कल तुमको सुला दिया था, मैंने ही तुमको सुलाया था, पर तुम इतना रोए, अगर तुम्हारी पुकार भगवान तक पहुंच जाती तो वो तो मुझे ऐसा दंड देते मैं तो समाप्त हो गई होती, इसलिए मैं खुद ही आ गई तुमको उठाने के लिए। तो एक भक्त को भी कितना ख्याल होता है अपनी साधना का, अपनी अर्चना का, अपनी प्रार्थना का, वंदना का, पूजा का, भक्ति का। और यहां तो हम भगत नहीं है, स्वयं बच्चे हैं। ऐसा अनुभव हो जो बाबा कहते खटिया हिल जाए। अगर राजा ही चाहिए तो क्या छोड़ना पड़ेगा, रजई छोड़ना पड़ेगा। कोई एक बहन कह रही थी, प्रश्न पूछा था कि मुझे स्वप्न में बाबा दिखाई दे रहे हैं, 4 बज गए, थोड़ा सा आंख खोल के देखा भी 4 बज रहे, पर इधर स्वप्न भी चालू है, तो मुझे उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए। क्योंकि बाबा से तो मिलन हो ही रहा है स्वप्न में। क्या उत्तर देंगे? उठकर बाबा से मिलन का जो सुख है वो तोड़ देना चाहिए कि सोते हुए वो मिलन का अनुभव और आनंद लेना चाहिए? क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ, उठना चाहिए और ये जो स्वप्न दिख रहा है, बाबा दिख रहा है, उसमें बाबा का अनुभव हो रहा है समीपता का, उसका क्या? वो भी माया ही है, उसमें विकर्म विनाश हो रहे हैं क्या? बाबा हमेशा ध्यान के लिए कहते हैं, देखो ये बच्ची अभी ध्यान में है, क्या इसके विकर्म विनाश हो रहे? टाइम वेस्ट, इधर लाइट उधर लाइट, कईयों को दिखता है और उसमें ही अपने आप को महान समझने लगते हैं कि हमको ये दिखा। मधुबन में लोग आते हैं, माता है, शांति स्तंभ पर बाबा खड़ा हुआ दिखा, फिर इधर लाइट उधर लाइट, इधर कुछ उधर कुछ, हमने कुछ कहा वो हो गया, हमने ऐसे टचिंग हुई और वही चीज हो गई। ये सब माया के ही रूप है। ये लक्ष्य नहीं है। तो यदि संसार के भक्तों को इतना ख्याल है तो हमें कितना ख्याल रहना चाहिए, कितना अपनी दिनचर्या के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। रात को सोने की विधि भगवान ने यहां तक कहा है, 31 दिसंबर 1995 अव्यक्तवाणी, यदि रात को सोते हो तो सेवा समाचार सुनाते सुनाते नहीं सो एक दूसरों को, अगर सेवा समाचार सुनाना भी हो तो कमरे से बाहर जाओ, सेवा समाचार सुनाओ, फिर अंदर आओ और फिर सो। अब ये तो महावाक्य, थक गए और लेट गए ये भी अलबेलापन है। तो सबसे पहली चीज, सतयुग में प्रकृति जगाएगी, सतयुग में चिड़िया जगाएगी, चिड़ियों की चहचहाट, सतयुग में वो प्राकृतिक सौंदर्य उठाएगा, यहां तुमको प्रकृति पति उठाता है। इसके लिए ये सफर उस सफर से अधिक, उस मंजिल से अधिक सुहावना है। दूसरी बात, वहां तुम्हें सांस सुनाई देंगे पंछियों के, चिड़िया के, यहां तुम्हें कौन सा सांस सुनाई देता है? स्वयं मुरलीधर की मुरली का सांस। सतयुग में मुरली होगी क्या? सतयुग में ज्ञान होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, वो प्रालब्ध है, पर अभी ज्ञान है। तो हमारा ज्ञान की तरफ कितना ध्यान रहना चाहिए, रोज मुरलियां चलती है, कितना उसका अध्ययन पढ़ना। दादी जानकी ने बाबा से कहा था, बाबा मैं लेट हो गई यज्ञ में आकर, मेरे से पहले सब आ गए, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे आगे जाऊं? बाबा ने कहा 7 बार मुरली पढ़ो। दादी ने कहा यदि मैं 21 बार पढ़ू तो? देखा, दादी की क्लास साकार मुरली जैसी होती है। दादी की क्लास पूरी होने के बाद किसी को पूछो क्लास की पॉइंट्स बताओ, वो कहेंगे बहुत बढ़िया क्लास थी, और था क्या वो मत पूछो, क्योंकि इतनी सारी पॉइंट्स है कुछ भी याद नहीं, कभी यहां की कभी वहां की, एक लाइन ना मिले दूसरे लाइन से, जैसे साकार मुरली में अभी अभी एक, अभी अभी वो, अभी अभी वो, अभी अभी वो, एक पैराग्राफ में 10 टॉपिक्स आ गए, कुछ भी याद नहीं। वैसा है क्योंकि बुद्धि क्या बन चुकी है, गोल्डन वेसल, शेरनी का दूध कहां ठहरता है, सोने का बर्तन है बुद्धि और कान, जिनके श्रवण समुद्र समाना, उसकी बातें सुनने के लिए समुद्र बन गए कान, सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं, अलौकिक बातें, बड़ी सूक्ष्म बन गई है बुद्धि। वो वहां पंछियों के सांस, यहां भगवान के सांस, भगवान की वाणी। उस मंजिल से ये सफर सुहावना, वहां पर एक नेत्री होंगे, सतयुग में एक नेत्री, यहां कितना है? त्रिनेत्री, तीसरी आंख मिली है, वहां केवल एक ही नेत्र है, या कहो दो नेत्र है। एक इसलिए क्योंकि एक ही विजन है, एक ही दृष्टि है, और दो अर्थात दो नेत्र, एक कहो या दो, यहां तो त्रिनेत्री, तीसरी आंख से देखना है संसार को। दो आंख से देखोगे तो संसार की ओर आकर्षण होगा, देह की ओर आकर्षण होगा, वस्तुओं वैभव और संबंधों की ओर आकर्षण होगा, परंतु तीसरी आंख से देखेंगे तो सब कुछ विनाश होते हुए दिखाई देगा। जैसे महात्मा बुद्ध के जीवन में वर्णन है, आधी रात को उठ के चले जाते हैं, अपनी पत्नी को देखते हैं यशोधरा और वो बच्चा राहुल सो रहा है, उनको देखते हैं नहीं बताते, किसी को बिना बताए उस सारथी चन्ना के साथ निकल जाते हैं, नदी के तट पर पहुंचते हैं, उतरते हैं, अपने बाल काट देते हैं और चन्ना से कहते हैं अब तुम जाओ। वो चन्ना कहता है एक बार पीछे मुड़ के तो देखो हे राजकुमार गौतम, पीछे तो देखो, ये देखो राजप्रसाद, ये तुम्हारी पत्नी, ये तुम्हारा साम्राज्य, तुम सम्राट होंगे, एक बार तो पीछे मुड़कर देख लो। ये निर्णय लेने से पहले महात्मा बुद्ध पीछे देखते हैं और कहते हैं मुझे केवल चित जलती हुई आग की लपटें दिखाई दे रही है, बस और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आग ही आग दिखाई दे रही है, सब जल रहा है, भस्म हो रहा है। जब तीसरा नेत्र प्राप्त हो जाता है तो संसार के चीप एंटरटेनमेंट हमें आकर्षित नहीं करते, संसार की व्यर्थ की बातें और मनोरंजन की वस्तुएं आकर्षित नहीं करती, वो आकर्षित करता है जो सत्य है, जो स्थायी है, जो नित्य है। संसार के लोग आकर्षित नहीं करते। आजकल लोग फिल्म एक्टर्स के फैन बन जाते हैं, वो कहते हैं बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, ये करते वो करते हैं। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, वो संसार के कलाकार हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं, पर अशरीरी नहीं बना सकते। कि बना सकते हैं, वो हंसाएंगे, कॉमेडी करेंगे, रुलाएंगे ट्रेजेडी से, पर अशरीरी बनाते हैं क्या? क्या फिल्म देखने वाला अशरीरी हो जाता है कि और ही देहभान में आता है? और वो जो एक्टर्स है किस लिए काम कर रहे हैं? विश्व कल्याण के लिए। क्या उनकी भावना है कि हमारी एक्टर्स एक्टिंग से संसार का कल्याण हो जाए? ये भाव है? कौन सा भाव है फिर? क्या भाव है? पैसा। और ऐसों के पीछे जो दीवाने हैं और पागल हैं और उनको देखने के लिए सारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? कोई कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, भले धार्मिक ही सीरियल क्यों ना हो, परंतु उन एक्टर्स का कैलिबर क्या है? स्पिरिचुअल कैलिबर, आध्यात्मिक प्रतिभा क्या है? क्या उन्होंने भगवान को जाना है? क्या स्वयं को जाना है? सृष्टि चक्र को जाना है? कुछ भी नहीं जाना, फिर हम वो क्यों करें जो वो कर रहे हैं? इस संसार के, इस ड्रामा के सबसे बड़े एक्टर हम ही हैं, परंतु इस मीडिया का और फिल्मों का इतनी गहरी छाप है सब पर, बहुत गहरी छाप। तो सतयुग में दो नेत्री या एक नेत्री कहो, यहां पर हम हैं त्रिनेत्री, आंख खुल गई है, बुद्धि के कपाट खुले हैं, अब समझ में आया सत्य क्या, असत्य क्या, सार क्या, असार क्या, सत्य क्या, नित्य क्या, अनित्य क्या, नित्य अनित्य का बोध अब हुआ है, अब सब जानते हैं, तो हम फिर से उसी गड्ढे में नहीं गिर सकते। और उन सभी कलाकारों के जीवन के अंदर झांक कर देखो, फ्रस्ट्रेशन या अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, दुख है, बहुत दुखी है अंदर से, वैवाहिक जीवन दुखी है। जैसे दिखाया है, एक व्यक्ति बहुत उदास हो जाता है, बहुत निराश हो जाता है, इतना निराश, इतना उदास, डिप्रेशन में चला जाता है, साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, डॉक्टर के पास, और डॉक्टर से कहता है मुझे निराशा सी छा गई है, कुछ भी करने की दिल नहीं होती, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खाने की इच्छा नहीं होती है, नींद नहीं आती, रात रात भर जागता हूं, उदासी सी छाई रहती है। वो साइकेट्रिस्ट, वो मनोरोग विशेषज्ञ कहता है दवाई मैं तुमको दूंगा, परंतु मेरी एक सलाह है, हमारे शहर में सर्कस आई है और मैंने सुना है वहां एक ऐसा जोकर है, वो इतना हंसाता है, सबको इतना हंसाता है, तुम वो सर्कस जरूर देखने जाओ, तुम्हारा जी बहल जाएगा, थोड़ा सा मन को आराम लगेगा, रिफ्रेशमेंट हो जाएगी, उस सर्कस को देखने तुम जरूर जाओ, और खासतौर उस जोकर को देखने। वो व्यक्ति कहता है वो जोकर ही मैं हूं। मैं ही उदास हूं, दूसरों को हंसा रहा हूं पर आंतरिक मैं उदास हूं। कॉमेडियंस जितने हुए हैं संसार में, उनके जीवन पर भी स्टडी हुई है और पाया गया है उनसे अधिक दुखी कोई नहीं था। उनका आंतरिक इंटरनल लाइफ दुख भरी थी। तो अभी हमारे पास क्या है? तीसरा नेत्र है। उसके बाद में अगली बात, वहां पर कितने लोक की सैर करेंगे? एक लोक की, और यहां तीन लोक की सैर। सूक्ष्म वतन, परमधाम, वहां एक ही लोक की सैर है, वहां एक ही प्रकार का एंटरटेनमेंट है, और जो आत्माएं 24 घंटे में सूक्ष्म वतन और परमधाम में नहीं जाती, उनमें और संसार की आत्माओं में ज्यादा अंतर नहीं है, जो तीनों लोक की सैर नहीं करते। सुबह सुना ना दादी ने क्या कहा, परमधाम खींचे, आवाज आए कि चलो उस धाम। अभी जो जा रहे हैं वो जबरदस्ती शायद, परंतु खींचो मौन की, खींचो अंतर्मुक्ता की, कोई पुकारे द डिवाइन कॉल आ जाए, वो अनंत की पुकार, वो अनहद नाद सुनाई दे, वो मौन का संगीत सुनाई दे, वो अव्यक्त आवाज खींचे। अव्यक्त महावाक्य बाबा के इन्वर्टेड कॉमा, तुम कहते हो तुम्हारा मुझसे प्यार है, तुम कहते हो तुम्हारा मुझसे प्यार है, जिसका जिससे प्यार है उसको उसके पास रहना चाहिए, मैं रहता हूं ऊपर तुम नीचे क्यों, मैं हूं अव्यक्त तुम व्यक्त में क्यों, मैं हूं आवाज से परे तुम आवाज में क्यों। तो तीनों लोक की सैर करते रहना है, चक्र लगाते रहना है, फरिश्ता रूप धारण करो, सूक्ष्म वतन चले जाओ, बाबा से मिलन मनाओ, आ जाओ परम धाम, चले जाओ उस अपने घर। जाना है हमें अब अपने परम धाम, जा देह ना है ना देह का भान, आवाज की दुनिया से चलो दूर कहीं, वो आवाज खींचे, आवाज से परे की दुनिया खींचे, वो अव्यक्त आवाज खींचे। तो सतयुग में एक लोक की सैर, और यहां त्रिलोक की सैर। सतयुग में एक लोक के नाथ होंगे, विश्वनाथ होंगे, और यहां कौन है? त्रिलोकीनाथ, त्रिलोक के नाथ है। त्रिलोक के नाथ अर्थात अनुभव करना है तीनों लोकों को, इस लोक के भी हम राजा हैं। सतयुग में देवता मां बाप होंगे, यहां मां बाप कौन है? स्वयं भगवान मात पिता है। और मां बाप को कैसे बच्चे पसंद है? जो आज्ञाकारी है। क्या ऐसे बच्चे पसंद है जो मानते ही नहीं कोई बात, जो कहो उसका उल्टा ही करेंगे? ऐसे बच्चे मां बाप को पसंद नहीं। मां बाप को वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो बहुत आज्ञाकारी है। सतयुग में दासियों की गोद में पलोगे। अभी किसकी गोद में पल रहे हो? भगवान की गोद में पल रहे हो। सतयुग में गलीचों पर सोएंगे, अभी याद के गलीचे पर सोते हो। सतयुग में रॉयल बुद्धू होंगे, अभी कौन है? ज्ञानी तू आत्मा है, योगी तू आत्मा है। मंजिल से ये सफर बड़ा सुहावना है। सतयुग में क्या खाएंगे और अब क्या खा रहे हैं? सतयुग में अलग अलग प्रकार के भोग, 56 प्रकार के भोग होंगे। यहां ब्रह्मा भोजन है, तो इस भोजन का सुबह भी कहा वेस्ट नहीं करना, इसका महत्व रखना और निंदा नहीं करना। जो भी मिल जाए अनन्य भाव से उसे स्वीकार करना। इसमें ये कम है, उसमें वो कम है, ये इसमें ये अच्छा नहीं है, उसमें वो अच्छा नहीं है। मधुबन में पार्टी आती है, हम देखते हैं सब, ये पसंद नहीं आता है, वो पसंद नहीं आता है, फिर अपने पसंद का बनाते हैं। पोहा बना हुआ है पर ये जनरल वाला है, हम स्पेशल वाला बनाएंगे, उसमें दोष निकालना। इस सुबह भी कहा दुख भंजक ये भोजन है, अनन्य भाव से उसे स्वीकार करना। और जो क्रोध में स्वीकार करता है उसे क्या कहेंगे? क्रोध में भोजन करना अर्थात नॉन वेजिटेरियन फूड को स्वीकार करना, ऐसा कहा जाता है। क्रोध आग है, वो मांसाहार हो जाता है, अंदर जाके जल रहा है। जैसे भोजन स्वीकार करने की विधि है अनन्य भाव से धन्यवाद देते हुए, सभी को धन्यवाद, उस किसान को भी धन्यवाद, उस जमीन को भी धन्यवाद, उस देने वाले दाता को भी धन्यवाद, बनाने वालों को भी धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। ऐसी प्रार्थनामयी अवस्था में प्रसन्न चित्त से भोजन स्वीकार हो और भोग लगाकर, वो सुबह भी बात बताई। तो इस भट्टी से एक बात सीखनी है सभी माताएं जो भोग नहीं लगाती, कल से या आज से या कल से भोग लगाना है, भगवान को अर्पण करना और फिर खाना। उस भोजन में शक्ति भर जाएगी, जो घर के विरोधी लोग हैं वो भी सहयोगी बन जाएंगे। पुरुष के हृदय का मार्ग कहां से चल होता है? पेट से। किसी के दिल तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके पेट से चालू करना पड़ेगा। पेट को खुश कर दो तो दिल अपने आप खुश हो जाएगा, यह भी एक विधि है। इसलिए तो कई लोग तो भोजन खा खा कर ही ज्ञान में आ गए, ब्रह्मा भोजन की वजह से ही ज्ञान में आए। शुरुआत में केवल गुरुवार को जाते हैं क्योंकि उस दिन विशेष होता है, फिर धीरे धीरे ज्ञान समझ में आता है, फिर धीरे धीरे आते हैं, कई साल लग जाते हैं इसको। तो वहां क्या खाते हैं, यहां क्या खाते हैं। उसके बाद में अगली बात है, वहां विश्व राज्य अधिकारी है, यहां क्या है? स्व पर अधिकार करने वाले स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य अर्थात सभी इंद्रिय हमारे वश में हो, कोई भी धोखा न दे। इसलिए बाबा कहते हैं दरबार लगाओ, देखो कोई किसी ने धोखा तो नहीं दिया। अभी अभी संडे की अव्यक्तवाणी चली थी, पार्टियों से मुलाकात, स्वराज्य अधिकारी, कान डिपार्टमेंट ठीक है, आंख का डिपार्टमेंट ठीक चल रहा है, ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट ठीक है, ईएनटी ठीक है, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ठीक चल रहा है, सब चेक करना है, एक एक डिपार्टमेंट की चेकिंग। तो स्वराज्य अधिकारी विशाल सा दरबार लगाना है। अभी भी पांडव भवन में कुछ दिन पहले चर्चा की थी, दरबार लगाओ इसी मुरली पर, पार्ट थ्री, बड़ा सा दरबार लगाना है। कौन कौन रहेगा इस दरबार में? मन बुद्धि संस्कार, उनको चेक करना है। मन क्या सोच रहा है, क्या उसकी भावनाएं आ रही है, क्या उसमें आ रहा है, बुद्धि क्या निर्णय दे रही है, संस्कार कहीं संस्कारों के मैं वश तो नहीं हो रहा हूं, पुराने संस्कार, ये तीन। फिर पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेंद्रिया, शास्त्रों में ऐसे दस बताए हैं। बाबा पांच का वर्णन करते हैं, कर्मेंद्रिया अर्थात पांच, परंतु जिसे बाबा कर्मेंद्रिया कहते हैं वास्तव में उसे ज्ञानेंद्रिया कहा जाता है, और कर्मेंद्रिया अलग है पांच, ये दस। ज्ञानेंद्रिया अर्थात आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध, इन पांचों को जीतना है। गुलजार दादी कभी क्लास करा रहे थे ओम शांति भवन में, अचानक खिड़की से कोई दुर्गंध आ गई, सब लोग ऐसे कुछ कुछ मुंह करने लगे, रुमाल निकाल निकाल के। दादी ने कहा यह भी स्वराज्य अधिकारी की निशानी नहीं, अर्थात वो गंध को नहीं जीता है, परमात्मा अभिमानी। यहां आत्मा अभिमानी भी है और परमात्मा अभिमानी भी है, वहां केवल आत्मा अभिमानी है, यहां हमारे पास परमात्मा अभिमान है। साकार महावाक्य है बाबा के, बड़ी नशे वाली बात है। एक समय आएगा सारी धरती तुम्हारी मुट्ठी में होगी, एक समय आएगा सारी धरती और आकाश तुम्हारी मुट्ठी में होगी, परंतु इस समय स्वयं बाप, स्वयं भगवान तुम्हारी मुट्ठी में है। कितना अच्छा वाक्य है, भगवान को हमने अपनी मुट्ठी में कर रखा है, वो हमारे अधीन है, वो हमारे वश में है, प्रेम के वश में। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, तुम बच्चों ने बाप को अपने प्रेम से बांधा है। तो बताओ, बंधने वाला बड़ा है या बांधने वाले बड़े हैं? मतलब हम अपनी तारीफ करें, बाबा हम आपसे बड़े हैं क्योंकि हमने आपको बांध लिया, ऐसे हाँ? मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम। बाप इस समय बच्चों का सर्वेंट बनकर आते हैं। नशे वाली बातें निकालनी है मुरली से, नशे में स्वयं स्वयं को चढ़ाना है, ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। और क्या है इस सफर में और उस सफर में अंतर, अब आप बताएंगे, सतयुग में और इधर क्या है, इधर क्या है जो उधर नहीं है? ये परिवार उधर है क्या? ये परिवार गिफ्ट है। कल की संडे को जो अव्यक्तवाणी चलने वाली है, ये जो मेला है, ये गिफ्ट तुमको मिली है यहां पर, ये ब्राह्मण परिवार, ऐसा परिवार उधर है क्या? और इस परिवार से तंग कौन कौन आ गया है? प्रभु परिवार है, सबसे बड़ा प्यारा परिवार है, पर सबसे ज्यादा हिसाब किताब भी इसी परिवार में है। संसार में इतने हिसाब किताब नहीं है जितने इस परिवार में हिसाब किताब है। और ब्राह्मण जीवन में ये ब्राह्मण परिवार एग्जामिनेशन हॉल है और एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है, जिसका हमने कोर्स किया वो भी पेपर, जिसने हमारा कोर्स किया वो भी कभी पेपर बन के आता है, जिसको हमने सहयोगी बनाया वो भी कभी ना कभी पेपर बनता ही है, छोटे बड़े साथी कोई ना कोई पेपर बन के आता है, परंतु फिर भी ये परिवार बड़ा श्रेष्ठ परिवार है, क्योंकि चाहे कैसी भी आत्मा हो, इस ब्राह्मण परिवार की हर आत्मा में तीन विशेषता तो है ही है, चाहे बिल्कुल डल हो, बुद्धू हो, कोई सेवा ना करता हो, सोते रहता है, अमृत वेला भी नहीं करता, मुरली भी नहीं सुनने आता, फिर भी तीन विशेषता तो है। कौन सी? सबसे पहला तो उसने उसको पहचान लिया, अवजानन्ति माम मुड़ा मानुषी तमाश्रित, जब मैं मनुष्य के तन में आता हूं मुझे पहचानना, लोग हंसी उड़ाते हैं मेरी, अवजानन्ति माम मुड़ा, मुझे जानते नहीं, मूड है वो, गीता में लिखा है, जो मेरा इस तरह उपहास करते हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता यहां बैठे हुए हर व्यक्ति में, हर ब्राह्मण आत्मा में, विश्व भर के, कौन सी है? गुप्त रूप में आए हुए भगवान को उसने जाना पहचाना, जिस भगवान को शंकराचार्य इमाम, जिस शंकराचार्य को बुद्ध तीर्थंकर, जिस शंकराचार्य को पैगंबर पयंबर धर्मस्थापक नहीं जान पाए, उस भगवान को जान लिया, कितनी बड़ी बात है। यह एक विशेषता है। दूसरी कौन सी विशेषता है? चाहे कैसे भी हो, परंतु पवित्रता को तो धारण किया है, माना तो है कि भगवान पतित पावन है और हमें भी पावन बनना है, पवित्रता की बात जच गई उसको, ऐसा शायद ही कोई ब्राह्मण होगा जिसे पवित्रता अच्छी नहीं लगती, पवित्रता ही अच्छी लगती है इसीलिए तो ब्राह्मण बने, वो संस्कार है अंदर कूट कूट के भरे हुए देवता ही, इसलिए खींच होती है, जैसे ये बहनों को देखते हैं, उनके वो श्वेत वस्त्रों को देखते हैं, आकर्षण होता है, अलौकिक आकर्षण, ऐसा लगता है ये है जीवन, ऐसा लगता है इनके जैसा जीवन होना चाहिए, ऐसा लगता है ये वो नहीं है संसार की स्त्रियां, ये कुछ और है, अलौकिक अनुभव होता है। ये दूसरी विशेषता प्यूरिटी। और तीसरी विशेषता, और भी कोई विशेषता है क्या? एक बार बहनों की भट्टी हुई थी 69 में, बड़ी बहनों की, उसमें एक घंटा तक काम दिया था, दूसरी जो साथी बहनें हैं उनके गुण लिखो, एक घंटा लग गया था सबको, गुण निकालने में बड़ा टाइम लगता है, अगर हमसे कहीं कोई कहे कि अपने पति के जरा 10 अवगुण लिखो, 10 25 रेडी है एकदम फटाफट, ये भी ठीक नहीं वो भी ठीक नहीं, इनको तो कुछ याद ही नहीं रहता है, फटाफट अवगुण लिखने में इतना फास्ट है, और कहो गुण लिखो तो बाप रे, इन निर्गुण हारों में तो कोई गुण ही ना ही, कहां से लिखे? भक्ति मार्ग में अपने लिए कहते थे, मुझ निर्गुण हारों में हारे में कोई गुण नहीं, ज्ञान में आने के बाद इस ब्राह्मण परिवार में एक भी गुणी दिखता नहीं है, सब अवगुणी भरे हैं यहां, इनके कहां से गुण लिखे, दिखाई नहीं देते कोई गुण, बड़ा सोचना पड़ता है, कुछ तो होगा कुछ तो होगा, हाँ ये अमृत वेला कभी तो उठा था, सो तो रहा था अमृत वेला पर उठा तो सही, उठने के भी मार्ग से, एक तो वो है जो उठते ही नहीं, रजाई के अंदर रहते, वो कहते हमारा गुप्त योग है, बाजू वाले को भी पता ना चले कि हम बाबा की याद में हैं, दिखावा करके क्या फायदा, ऐसा ढोंग आडंबर करके कुछ मिलने वाला है, लोग बैठते हैं वहां दिखाते रहते हैं हम योगी है, हिट हम तो गुप्त है, इतने गुप्त कि बाजू वाले को भी नहीं पता चलने देते, एकदम हृदय के अंदर बाबा की याद में एकदम तड़पाने वाली याद है, अंदर ही अंदर आंसू बह रहे हैं, पर हम नहीं चाहते दूसरे हमारे आंसू देखे, ऐसे भी महान प्रभु प्रेमी और तपस्वी इसी यज्ञ में है जो गुप्त रहना चाहते हैं। आडंबर जिन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब, तीसरी विशेषता हरेक में है, तन से, मन से, धन से, जन से, स्थूल या सूक्ष्म रूप से उसने अपने जीवन को समर्पित किया है भगवान के आगे, किसी ना किसी रूप से तो किया ही है, स्थूल सूक्ष्म, चाहे अवगुण से अवगुण किसमें भरे हो, परंतु यह विशेषता है। बाबा हमेशा मुरलियों में कहते हैं कि मेरा लास्ट बच्चा जो है वो भी संसार के लोगों से आगे है, जो अभी अभी आया है, अभी अभी जिसका जन्म हुआ उससे भी उसको इतना ही प्यार है। और कैसा भी बच्चा हो मां बाप को प्यारा ही होता है। यदि किसी मां बाप के घर में कोई गूंगा बच्चा पैदा हुआ तो उससे घृणा करते हैं क्या? नहीं करते ना। या अब तक उसको आंख थी, खेलते खेलते आंख चली गई, अंधा हो गया, तो उसको कहते अंधे? मां बाप कहते प्यार ही करते हैं। यदि चलते चलते इस पवित्रता के मार्ग पे कोई गिर भी जाता है तो भी बाबा उसको उठाते हैं, क्योंकि फिर भी तो वो प्यारा ही है, भगवान को तो जाना। यदि भगवान ऐसा कहता है तो हम क्या कहना चाहिए? हम कहते हैं इनमें तो बड़े खतरनाक लोग हैं, इनमें कोई गुनी नहीं है। एक सूफी संत हुआ था फरीद, किसी गांव में गया, झोपड़ा बनाया, रहने लगा, और उसके बाजू वाला जो व्यक्ति था इतना उसको तंग करता था, दिन रात कभी किचड़ा फेंक देता था उसके घर में, कभी गालियां देता था, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था, परेशान कर दिया उसने चार दिनों में। फरीद लिखता है कि पहली बार हे खुदा मैं तुझे कुछ मांग रहा हूं, इसको यहां से उठा दे, इसको यहां से कहीं ले जा, या इसका कुछ कर, मैं परेशान हो गया हूं इससे। भगवान उसके स्वप्न में आते हैं, खुदा कहता है ये 40 साल से मेरा पड़ोसी है और तुम चार दिन में परेशान हो गए, मैं 40 साल से इसे झेल रहा हूं और तुम चार ही दिन में परेशान हो गए। तब उसकी एकदम से आंख खुलती है, ये मैं क्या कर रहा हूं। तो एक दूसरे से परेशान नहीं होना है, एक दूसरे से लून पानी, एक दूसरे से मन मुटाओ, टकराव ना होना चाहिए। सुबह भी बताया था कि स्थिति सबसे महान, फिर है संबंध और फिर है सेवा। व्यक्ति सेवाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है, संबंध सेवा से अधिक महत्वपूर्ण है, संबंध को महत्व देना है। रिलेशनशिप्स आर ग्रेटर देन पर्संस एंड ऑब्जेक्ट्स एंड मनी। और क्या है सतयुग में और जो इधर है, अब आप बताएंगे। अतीन्द्रिय सुख है यहां पर, वहां तो इंद्रिय सुख है, कुछ भी हो जाए देवताओं के पास अतीन्द्रिय सुख नहीं है, अतीन्द्रिय सुख इधर है। अतीन्द्रिय सुख अर्थात जो सुख इंद्रियों की सहायता के बगैर लिया जाए, प्राप्त हो, उसे अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। उसके लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो आत्मिक सुख है। तो ये एक बात। और उधर क्या है, उधर ऐसी कौन सी बातें हैं, इधर ऐसी कौन सी बातें हैं जो सतयुग में नहीं है? मधुबन, ये कितनी अच्छी पॉइंट है। सतयुग में मधुबन होगा क्या? कितना सुंदर, कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है, सारे जहां से अच्छा है, सारे जहां से प्यारा है, ऐसा प्यारा मधुबन और कहीं नहीं होगा। और एक चीज जो रोज सबको करनी है वो है मधुबन की यात्रा। 24 घंटे में एक बार क्या करना है? मधुबन की यात्रा। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, अभी अभी हम मधुबन में होकर आते हैं। एक है स्थूल में जाना, एक है मन से जाना। शक्तिशाली कौन सा है? मन से। स्थूल में कोई वहां चला जाए पर बुद्धि यदि भटकती रहे तो क्या फायदा है?